श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 29। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार के ज्ञान का लाभ क्या होगा, तो जरा देखिए। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्यात्मनात्मानम ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। इससे पहले कि हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखें, हम श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका को देखते हैं। बहुत सुंदर टीका की है उन्होंने, और किस प्रकार से हम अपने आप को भ्रष्ट होने से बचा सकते हैं देखेंगे। तो पहले चीज ये देखनी है कि भगवान को जीव से भिन्न देखना है और प्रकृति से भी भिन्न देखना है पूर्वगत किए गए तरीकों के द्वारा। और भगवान का जब साक्षात्कार होता है, उसकी शक्ति के द्वारा व्यक्ति आत्मा को प्रकृति के विकारों से अलग देख पाता है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार और बहुत सारे जो हमारे जो शरीर में और हमारे मन में परिवर्तन आते हैं, विकार कहा जाता है, उससे अपने आप को अलग देखना। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस चीज को श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि अनर्थ जो है, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रम सात्वत संहिताम। वो कह रहे हैं कि जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हर साधक को परेशान करते हैं, अगर हम ये समझ लें कि ये मेरे मन के विकार हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो हम डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे उससे और उसमें लिप्त होने से हम रहित हो जाएंगे। अगर काम उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो मैं इससे भिन्न हूं, मैं इस मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई पूरी तरह से बाध्य नहीं हूं, बिल्कुल बाध्य नहीं हूं, कोई मुझे बाध्य नहीं कर रहा है, मेरा मन भी मुझको बाध्य नहीं कर सकता है। अगर ये साक्षात्कार हो, अपने आप को अलग देखना इन सब इच्छाओं से, प्रायः व्यक्ति अपनी पहचान अपने मन से करता है, अर्थात मन के विकारों को अपने विकार, अपनी इच्छा मानता है और फिर इन इच्छाओं की पूर्ति में लगता है। और हो क्या रहा है, अज्ञान के कारण हमने कुछ इंद्रिय भोग किए हैं, उसका संस्कार हमारे मन में पड़ जाता है। अब वही पिक्चर बार बार मन दिखाता है, वो कोई नई पिक्चर नहीं बना पाता। मैंने उदाहरण कभी दिया नहीं है, लेकिन ये अच्छा उदाहरण है। जब आप कोई टीवी देखा करते होंगे, तो उसमें जो सीरियल है वो बार बार नए नए सीरियल बना के लाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब सीरियल नहीं होता है तो उसी को रिप्ले किया जाता है। तो हमारा जो मन है, उसके बहुत चलायमान है, बहुत गंदा है मान सकते हैं, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी हैंडीकैप है, उसका लंगड़ापन है ये कि वो कोई नया सीरियल नहीं बना सकता, सारे सीरियल हमने बनाए हैं, हम सीरियल बना रहे हैं, मतलब हम संस्कार दे रहे हैं इंद्रियों के द्वारा मन को, बाद में वो वही संस्कार रिप्ले करता है, समझ रहे हैं ना। जब हम जप करते हैं तो पुराने संस्कार आते हैं, तो खाली पुरानी पिक्चर को बार बार दिखा रहा है, यस, और उसका निर्माण हमने किया। तो ठीक है, हमने ज्ञान में जो किया सो किया, लेकिन अब हमारी कोई बाध्यता नहीं कि उस पिक्चर को बार बार देखें, या अगर देखें, या अगर चलाई भी जा रही मन के द्वारा, तो हम उसको भी ध्यान दें। भक्ति योग के द्वारा इन अनर्थों का पूरी तरह से सफाई हो जाती है, ये लोग जानते नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवतम का व्यासदेव जी ने रचना करी कि भक्ति योग के द्वारा अनर्थों से मुक्त हो, और ये अनर्थ मेरे ऊपर हैं, मेरे मन के ऊपर हैं, मेरा से कोई संबंध नहीं है, ये देखते हुए बिना बिल्कुल निरुत्साहित ना होते हुए व्यक्ति भगवान की भजन करे और अनर्थों से मुक्त हो जाए। भजन क्रिया करेंगे तो अपने आप अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे शरीर में कोई रोग है, तो शरीर में रोग है तो उसके लिए हम दवा लेंगे तो वो ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से भक्ति के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति इन छह प्रकार के रूपों से मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए अपने को अपनी भर्त्सना करने के बजाय व्यक्ति को इससे अपने को अलग देखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर है। उसके बाद वो क्या है बोल रहे हैं कि व्यक्ति क्या देखे कि सम्यक अवस्थितम, भगवान सभी में सम्यक, बढ़िया तरीके से, सम्यक लिखा है यहाँ पे, समम नहीं, सम्यक अवस्थितम यहाँ पे लिखा हुआ है, समम पश्यनि सर्वतः सर्वत्र समवस्थितम, यहां बोल रहे हैं समवस्थितम को बोल रहे हैं सम्यक अवस्थितम। यहाँ पे शब्द आया ना सम अवस्थितम, मतलब समान रूप से स्थित है, बढ़िया तरह से स्थित है, मतलब यहां बोल रहे हैं कि भगवान अपने सिद्ध गुणों, मतलब उनके गुण परिवर्तित नहीं होते और उनका रूप परिवर्तित नहीं होता, सभी जीवों में सर्वत्र समान रूप से है। मैं समझाता था उसका अर्थ, इसका अर्थ ये है कि भगवान हमारे शरीर में है लेकिन हमारे भोगों से बिना बिल्कुल लिप्त हुए बिना वो हमारे शरीर में रहते हैं और उसी स्वरूप में रहते हैं, जैसे परमात्मा के रूप में वैसे ही रहता, चतुर्भुज रूप में रहते हैं, रूप में परिवर्तन नहीं आता, चाहे वो सूर्य के शरीर में हो और चाहे वो एक मल खाने वाले कीड़े के शरीर में हो और चाहे वो ब्रह्मा जी के शरीर में परमात्मा के रूप में रहे। तो ये देखना चाहिए कि भगवान कभी लिप्त नहीं होते, भगवान कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हमने चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक में, भगवान भी गीता में बोलते हैं नामे कर्माणि लिम्बन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। वही भगवान, वही परमात्मा जब भगवान कृष्ण के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, भगवान आते हैं और वो कुछ जगत में क्रियाएं कर रहे हैं तो भी वो लिप्त नहीं होते। इसलिए कुछ लोगों को जो बोलते हैं कि भगवान के ऊपर शाप लगा था इसलिए उनके यदुवंश नष्ट हो गया, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। भगवान को कोई पाप नहीं लगता, अपाप विद्धम उनका नाम है, कोई पाप नहीं लगता। तो ये देखने वाला व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य है। देखिए सिद्धांत का कितना लाभ है, केवल सिद्धांत ठीक से समझ ले व्यक्ति तो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। भगवान पर अगर इस तरह का दोषारोपण करे कि वो सामान्य व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे लेकिन व्यक्ति थे, एक पुरुष थे, इंसान थे, तो भगवान के धाम कभी नहीं जा सकता। क्योंकि कितना भी महान व्यक्ति हो वो कर्म बंधन के अनुसार ही चल रहा है, लेकिन भगवान कर्म बंधन के अनुसार नहीं चलते। ठीक है,
कोई प्रेसिडेंट अगर जेल में आता है वो अपनी इच्छा से
अपनी आता इच्छा है। से आता है देखने के लिए आ रहा है कि जेल ठीक है कि नहीं, तो हाँ कह रहे नया कह दिया आया, चलो इसकी भी पिटाई होगी, तो इसे उचित नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं आत्मनः, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न हिन्नस्य आत्मनात्मानम। यहाँ पे आत्मा का अर्थ है कि अपने मन के द्वारा अपने की अपनी दुर्गति नहीं होने देता। तो यहाँ विचार बता रहे हैं कि मन के द्वारा इंद्रिय भोग के विषयों का चिंतन करता है और इसी के कारण दुर्गति होती है। अगर आपको याद हो तो भगवान तीसरे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि अवसादयेत, अपने मन से अपने अपनी दुर्गति ना होने दो, बल्कि अपने मन को भगवान में लगाकर अपनी चेतना का उत्थान करो। मन क्रियान्वित होता है आत्मा की चेतना के द्वारा। ठीक है, अब उस मन को अगर हम भोग के विषयों में लगाएंगे तो चेतना दूषित हो जाएगी और यही मन अगर भगवान की तरफ मुड़ा तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। तो यहां ये बोल रहे हैं कि मन को भोग के विचारों में लगाने की बजाय मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए का प्रयास करता है और उन परमात्मा की कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करता है। और साथ साथ प्रकृति के जो जो तथाकथित सुख है उसके प्रति विरक्ति की भावना भी व्यक्ति निर्माण करता है कि जो सो कॉल्ड भोगों का प्रलोभन मुझे माया दे रही है, ये भोग मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं भोगों में लिप्त हुआ भी हूं, अगर होऊंगा भी तो भी मैं संतुष्ट नहीं होने वाला। तो इस प्रकार की विरक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने मन को संभालता है और अपने मन से अपनी दुर्गति होने से रोकता है। तात्पर्य को पढ़िए
जी,
हमने अनुवाद पढ़ लिया था ना। हाँ, तात्पर्य पढ़िए।
जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह
समझ में आई लाइन, अर्थात इसका यह है कि हाँ हमने ये हम खुद मान लिए हैं कि हम ये शरीर हैं, ये हमारी गलती है, हमें हम खुद ही वी आर सेल्फ कन्विंस्ड कि हम ही शरीर हैं और इस प्रकार से हम अपने आप को बहुत दुर्गति में रखे हुए हैं। जैसे एक शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ का बच्चा मानेगा तो फिर दहाड़ेगा क्या, वो तो मैं म्याऊं करेगा या बिल्कुल मुंह करेगा। तब उसकी गलती है ना कि वो समझे कि वो शेर का बच्चा है, भेड़ का बच्चा नहीं है। तो ये हमारी दुर्गति है, हमें समझ में आना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, इस जगत के हैं ही नहीं। कितने भी महान व्यक्ति हो उसको स्टूल पास करना पड़ता है, तो हम इस जगत के महान व्यक्ति नहीं बनना है हमको, हमको भगवान के धाम पहुंचना, भगवान का पार्षद बनना है, ये समझ में आना चाहिए। यस,
किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखते हैं तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है।
आप समझ रहे होंगे यही चीज बलदेव विद्याभूषण जी समझा रहे थे कि मन की स्थिति क्या है। मन हमेशा एक उस कुत्ते की तरह है जो हमेशा टट्टी चाटता है, गंदी चीजों की तरफ जाता है, सूंघता है। अब देखिएगा मन की ये भौतिक मन की एक प्रवृत्ति है कि वो गंदी जगह ही जाता है, बहुत मुश्किल से भगवान की तरफ आता है। लेकिन जिस प्रकार से कुत्ते को खींच खींच करके ट्रेन देता नहीं, तुम सीधे चलो सीधे चलो सीधे चलो, तब वो ट्रेनिंग मिल जाती है तो सीधे सीधे चलता है। तो उसी प्रकार से आप कहें कि भाई हमारा मन जो है वो भगवान की तरफ जाने लगा है, ये कहना कि स्थिति बहुत आगे जाएगी जब कोई भौतिक विचार नहीं आए। अभी हमारा मन वही से समझ लेना चाहिए ऐसा कुत्ता की तरह है जो गंदी वस्तुओं के प्रति ही आकृष्ट होता है, और उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, उससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, तो स्वभाव है और वो स्वभाव हम ही ने दिया है, उसको खूब ट्रेनिंग दे रखी है। अब वो चाहे कितना भी भौंके चाहे कुछ भी करे, मन से हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे तो नए नए संस्कार बनते रहेंगे मन में, तो फिर मन में अच्छी भावना बढ़ जाएगी, अच्छे संस्कार बन जाएंगे। जब अच्छे संस्कार प्रबल होंगे तो बुरे संस्कार अपने आप साफ भी हो जाएंगे और बुरे संस्कार वीक भी हो जाएंगे, तो हमें कम प्रभावित करेंगे। जैसे जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है उसके ऊपर भौतिक प्रकृति कम प्रभाव डालती, ठीक है। तो यही बात हमें बोल रहे हैं कि, और हाँ दूसरा, अपने मन को भगवान में लगाकर वो वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। मन मना भव मद भक्तो, सब जानते हैं। यस,
सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान से आगे बढ़ जाता है।
आने की जरूरत नहीं, हमने अभी समझा दिया था, बहुत क्लियर है, ठीक है। हरे कृष्णा।